SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन SBS ऑडियो ऐप SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।
नमस्कार, मैं हूँ नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपको बता दें, अमेरिका में बहुमत के लिए 270 सीटें जरूरी होती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को 50 राज्यों से 270 से भी अधिक सीटें अब मिल चुकी हैं। आपको बता दें, कड़ी टक्कर देने के बाद विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस केवल 224 सीटें ही जीत पाई हैं। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। अभी तक आए नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता हैं जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। इस अंश में हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट अमिताभ मट्टू से, जो इन नतीजों का विश्लेषण करेंगे। SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी।
नमस्कार नताशा जी।
तो सबसे पहले हमें बताएं, यूएस इलेक्शन रिजल्ट हमें समझाएं, किस प्रकार और क्यों ये इतना चर्चा का विषय बन गया है विश्व भर में।
देखिए, सबको लगता था कि शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनपे क्रिमिनल फेलनी के चार्जेस भी हैं, क्योंकि लोग उनसे बहुत दुखी भी थे, कई प्रकार के लोग और लिबरल मीडिया भी उनके खिलाफ था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये एक कोलिशन तैयार किया, उसकी वजह से पूरी अमेरिका को नहीं, दुनिया भर में एक सरप्राइज मिला, एक चौंकाने वाला जैसा वर्डिक्ट हुआ। और ये कोलिशन जो इन्होंने बनाया, बहुत समझदारी से कोलिशन बनाया, जिसमें वर्किंग क्लास को मिला के और अलग अलग तबके जो थी उनको सबको एक नया रेनबो कोलिशन बनाया, जो डेमोक्रेट से दुखी था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को नहीं समझता था कि वो काबिल हैं, और कई लोग वो भी थे जो जिनको लगता था कि एक औरत शायद अभी तैयार नहीं है, अमेरिका तैयार नहीं है एक औरत को एक सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस बनने का। लेकिन बहुत चालाकी से ये कोलिशन बना और प्रेसिडेंट ट्रंप अब दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे जनवरी में।
अमिताभ जी, ट्रंप को चरम दक्षिणपंथी, स्त्री विरोधी, गर्भपात विरोधी और सुपर रिच समर्थक माना जाता है, फिर भी उन्हें पॉपुलर वोट से जीत हासिल हुई है। यानी क्या ये सभी मुद्दे अमेरिकी जनता के लिए अहम नहीं रहे?
देखिए, कई ऐसे मुद्दे ट्रंप ने पे गौर किया जिससे उनको लोगों को लगा कि ये ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे अमेरिका के हित में होंगी और एक अमेरिकन जो ड्रीम है उसको वापस लाएंगे। पहली बात तो जो लोगों को सबसे ज्यादा और गरीब जो लोग हैं, वर्किंग क्लास लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस का मुद्दा था माइग्रेशन। अब आप जानते हैं कि मेक्सिको से और अलग अलग देश से, हेटी से और भारत से भी कई बार इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं अमेरिका में, और इलीगल माइग्रेंट्स की बात है कि वो नौकरियां लेते हैं, जो वेजेस हैं उनसे कम पे, डेली वेजेस हैं उनसे कम पे तैयार है काम करने के लिए। तो लेकिन दुखी कौन होता है? जो वर्किंग क्लास है, क्योंकि उनकी नौकरियां चली जाती हैं। तो ट्रंप ने ये बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बनाया अपने कैंपेन का कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करूंगा। और एक पहले भी उन्होंने पिछली बारी भी जब ट्रंप सरकार थी फर्स्ट, तो उन्होंने कहा था मैं एक दीवार बनाऊंगा ताकि मेक्सिको के साथ कि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आएंगे, और ये भी बंद करेंगे कि H-1B वीजा पे जो लोग आ रहे हैं उस पर भी एक स्ट्रिक्टर पॉलिसी बनेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अमेरिका में एक जमाना था जब गाड़ियां बनती थी, मैन्युफैक्चरिंग का हब था पूरी दुनिया के लिए, लेकिन क्योंकि अमेरिकन वेजेस इंक्रीज हुई तो कैपिटल चाइना गया, साउथ ईस्ट एशिया गया, भारत में आया, वो चाहते हैं कि एक टैरिफ रेज करके, एक ड्यूटीज रेज करके वो मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका में लाए। उससे फायदा वर्किंग क्लास को ही होगा। तो ये सुपर रिच होने के बावजूद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी एक वर्किंग क्लास को टैप किया। साथ ही साथ सोशल मीडिया जहां तक ताल्लुक था वो भी एक, और मीडिया था वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक लोगों के हाथ में था, लेकिन इलॉन मस्क जो उनके सबसे राइट हैंड निकले, उन्होंने ट्विटर को खरीद के एक्स बनाया और ट्रंप को प्रमोट किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
जी। अमिताभ जी, सब इन नतीजों में सबसे ज्यादा शॉकिंग और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्या रहा?
देखिए, सबसे शॉकिंग तो यह है कि उन्होंने पॉपुलर वोट भी जीता, साथ ही साथ इतने ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज में उनको सीटें मिली
जी,
और अब रिपब्लिकन सेनेट भी कंट्रोल करते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कंट्रोल करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस हैं उनका भी आइडियोलॉजिकल जो एफिलिएशन है वो रिपब्लिकन्स के साथ है। चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत कम है। ट्रंप सरकार शायद अमेरिका में बहुत सालों के बाद ऐसी सरकार है जिसमें एक आदमी, एक सिंगल आदमी और अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, क्योंकि वो अपने रोज नीतियां बदल भी सकता है, वो इंचार्ज होगा और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो सबसे शॉकिंग है। और सबसे एक्सपेक्टेड यही था कि कमला हैरिस को जो सपोर्ट बेस है वो विमेन में ज्यादा होगा, और विमेन में ही रहा क्योंकि उसने एंटी जो अबॉर्शन लॉ बने हैं और रोई वेड का एक केस जो ओवरटर्न हुआ था उसका वो प्लेटफॉर्म था कि नारियों का जो अपने बॉडीज पे कंट्रोल है, रिप्रोडक्टिव राइट्स पे कंट्रोल, ये वापस बहाल किया जाना चाहिए। तो वो एक्सपेक्टेड लाइंस में ज्यादा औरतों ने कमला हैरिस को ही वोट किया।
भारतीय अमेरिकन वोटर्स ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रुझान रखते हैं ऐसा माना जाता है, यानी कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे। ट्रंप के जीतने के बाद क्या भारतीय समुदाय पे किसी प्रकार का असर पड़ने वाला है?
देखिए, एक लेवल पे तो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत गहरी दोस्ती, एक केमिस्ट्री है
जी।
और आप जानते हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे ह्यूस्टन में, तो उन्होंने ट्रंप रैली में भी कहा था इस बार ट्रंप सरकार, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप भी आए थे गांधीनगर में, गुजरात में मोदी के नियोजन पे। तो इसलिए एक केमिस्ट्री तो है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो टैरिफ, इकोनॉमिक टैरिफ रेज करेंगे, वीजा पे कटौती होगी या H-1B वीजा कम या बंद कर देंगे, तो इस पे तो फर्क पड़ेगा नीतियों का, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक भी अमेरिका का सवाल है, वहां भी जो डायस्पोरिक कम्युनिटी थी डिवाइडेड थी। कई लोग हैं जो ट्रंप के काफी सपोर्टर्स हैं। अभी नाम आया है कि CIA चीफ की निशत काश पटेल एक है, वो ट्रंप के बड़े क्लोज एडवाइजर रह चुके हैं, शायद वो बने CIA नेक्स्ट चीफ। तो हर एक डायस्पोरा की तरह रिपब्लिकन भी हैं, डेमोक्रेट्स भी। अब कई सर्वे आपने ठीक कहा कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया है, लेकिन ये भी है कि ट्रंप
जी
वो एक वो, लेकिन ये सर्वेज है। सच बात तो ये है कि ट्रंप कैंप में भी भारतीय काफी हैं। विवेक रामास्वामी हैं जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खुद थे, वो भी उनके सपोर्टर हैं, बहुत ही इनसाइडर हैं। साथ ही साथ अलग और भी हैं जो ट्रंप को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मेरा मानना है कि उस पर्सनल डायस्पोरा को कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत की रिश्तों पे ये थोड़ा टेंशन आ सकता है अगर ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी से भारतीय जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका में वो कम हो जाए या और महंगे हो जाए, और अगर H-1B वीजा में जिसमें भारतीय IT प्रोफेशनल और अलग अलग प्रोफेशनल जाते हैं अमेरिका में, उससे कुछ रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाए।
जी, तो जो पहली ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें और अब जो एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है उसमें क्या अंतर देखने को मिलेगा भारत के साथ जो संबंध अमेरिका के साथ है?
देखिए, कई लोग बोलते हैं कि ट्रंप पहली सरकार जो थी वो काफी नीजर थी और ट्रंप अब काफी बदल गए हैं। कई लोग तो कहते हैं और समझदार हो गए हैं और सचमुच वो रिश्ते बहाल करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं। तो अगर वो उनकी ये और ट्रंप की जो अभी ट्वीट हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो एक्सचेंजेस हुई, लगता है उससे कि ट्रंप सरकार 2 में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी गर्मजोशी से शुरू होंगे। अब ये मुद्दे कई हैं, जैसे मैंने आपको बोला आर्थिक मुद्दे हैं या वीजा के मुद्दे हैं, इस पे शायद कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन भारत और अमेरिका के मुद्दे अब बाईपार्टिसन लेवल पे है। डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन आए, उनकी बैंडविड्थ इतनी ज्यादा है कि वो चलेंगे, एक ऑटो पायलट पे है सबसे रिश्ते तो मजबूती की तौर, और सबसे ज्यादा क्योंकि चीन का खतरा अमेरिका को भी है और भारत को भी।
बिल्कुल, और मैं अगला सवाल यही पूछना चाहती हूँ क्वाड पे, क्वाड संगठन पे, जैसा माना जाता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने के लिए ये 4 देशों ने, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US शामिल हैं, ये क्वाड समूह बना था। तो ट्रंप की लीडरशिप में इस क्वाड का क्या महत्व रहेगा?
देखिए, महत्व तो रहेगा, लेकिन ट्रंप ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वो बाकियों की सिक्योरिटी, बाकियों की डिफेंस के लिए अमेरिकन पैसा नहीं देंगे। तो वो चाहेंगे कि जो क्वाड कंट्रीज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, वो भी और ज्यादा इन काइंड और इन कैश कंट्रीब्यूशन करें। ये ना लगे कि ये जो क्वाड है ये अमेरिकन सब्सिडाइज अलायंस है या एक एशिया में नेटो है। वो नेटो में भी कटौती करेंगे और कि नेटो में के अमेरिकन जो कमिटमेंट है, इकोनॉमिक कमिटमेंट है, वो चाहेंगे कि यूरोपियंस उसको बेयर करें ज्यादा से ज्यादा तक। तो वो उनकी तो पॉलिसीज वैसे ही हैं कि ये अमेरिकन अब पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द फ्री वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि जहां भी उनके एलाइज हों वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करें और सब्सिडी ना मांगे हमेशा हर एक चीज के लिए अमेरिका से। अमेरिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो सकता है, लेकिन फाइनेंस नहीं कर सकता सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी दुनिया।
जी अमिताभ जी, विश्व भर में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं, ट्रंप के आने के बाद उन पर क्या असर पड़ने वाला है?
देखिए, ट्रंप चाहता है कि अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन पैसा दुनिया की कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाए, लेकिन साथ ही साथ वो दिखाना भी चाहता है कि अमेरिका के पास अभी भी वो ताकत है कि यूनिलैटरली वो बता सकती है देशों को कि अगर तुम नहीं करोगे तो आपके पास बड़े ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से जहां तक रशिया का और यूक्रेन का ताल्लुक है, परेशानी तो यूक्रेनियंस को भी होगी, लेकिन रशिया को भी ये प्यूटिन के साथ उनकी एक रिश्ता है, लेकिन प्यूटिन को भी वार्निंग दे सकते हैं कि अगर आपने ये जंग खत्म नहीं की तो फिर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो प्यूटिन भी शायद बेयर ना कर सके। तो ये दो लेवल्स पे होगी, ये ना हो कि ज़ेलेंस्की को फ्री राइड मिले कि उनको लगा कि अमेरिकन पैसा आते रहेगा, वो जंग लड़ते रहेंगे, दूसरी लेवल पे वो प्यूटिन को भी एक वार्निंग देंगे। मेरा मानना है कि यूक्रेन रशिया वॉर पे अच्छा असर होगा। जहां तक मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है या गाजा पे कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और मुझे लगता है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप की नीतियां क्या होंगी, क्योंकि उसमें एक डोमेस्टिक फैक्टर है, वह ज्यूइश लॉबी का है, ज़ायनिस्ट लॉबी का है, और वो क्या ट्रंप पे कितना प्रेशर डालेंगे उस पर काफी असर पड़ेगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियां होंगी मिडिल ईस्ट की तरफ।
जी, कल मैंने कुछ अमेरिकन वोटर्स जो भारतीय मूल के वोटर्स हैं उनसे बात करी और कुछ का मानना है कि ट्रंप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय मूल के लोगों को नहीं लेते हैं। आपका क्या मानना है, क्या हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भारतीय मूल के लोग दिखेंगे?
देखिए, जैसे कश्यप पटेल के नाम हो रहा है और विवेक रामास्वामी भी हो सकते हैं। देखिए, ट्रंप ज्यादा गौर अपने पर्सनल रिश्तों पे देते हैं, वो रंग भेद की नीतियां नहीं उतनी ज्यादा पर्सनल या एथनिसिटी पे नहीं उस पर ज्यादा गौर करते हैं। मुझे लगता है कि कई भारतीय हैं जिन्होंने कायम किया है एक अपना पर्सनल रिश्ता, उसकी वजह से वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में का पार्ट बनेंगे। शायद कैबिनेट में ना हो, लेकिन अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन हैं, क्योंकि हर एक कैबिनेट अप्रूव के लिए सेनेट अप्रूवल होना, कांग्रेस में अप्रूवल होना चाहिए, इसलिए शायद मुश्किल होगा, लेकिन बाकी जगह मुझे लगता है काफी आपको भारतीय लोग मिलेंगे वहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी कैबिनेट में से कितने लोगों को पहले भी ट्रंप वन एडमिनिस्ट्रेशन में फायर किया, और जो जितनी आधे से ज्यादा कैबिनेट तो जो थी ट्रंप वन में, उन्होंने इस बारी कैंपेन में कहा कि हमें ट्रंप पे भरोसा नहीं है। तो रहना या ना रहना उसमें उतना नहीं असर पड़ता, ट्रंप अपनी नीतियां खुद बनाते हैं, उसी लिए थोड़ा बहुत खतरनाक भी है, अनप्रिडिक्टेबल भी है, और समझ नहीं आता है कि आज कुछ कहें और कल दूसरी नीति अडॉप्ट करें।
आखिरी सवाल, अब हमने आपसे भारत के साथ संदर्भ में ट्रंप की बात तो पूछी, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आपसे पूछना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका के रिश्ते किस प्रकार से बदलाव आने वाला है उनमें?
देखिए, अंदरूनी तौर पे ट्रंप को जो लेबर पार्टी है उनके सोशल इश्यूज पे या उनके बैकग्राउंड पे उनको सपोर्ट करना उनके लिए शायद कार्डर में वर्क उनके पूरे जो है पार्टी में इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भी इतने गहरे रिश्ते हैं, फाइव आईज का पार्ट है, कि जो भी व्हाइट हाउस में होगा, एल्बनीजी हो या कोई टोनी एबट हो या कोई और रिपब्लिकन लीडर हो, उनको रिश्ता कायम करना है, बरकरार रखना है। अब क्या केविन रड एम्बेसडर रहेंगे, इस पे एक सवाल है, लेकिन ये तो बात है कि जहां तक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का रिश्ता है वो इतना गहरा है कि वो चलता रहेगा। ट्रंप की नीतियां या डोमेस्टिक अटरेंसेस पे असर पड़ सकता है कई लोगों पे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस पे जो ऑस्ट्रेलियन आर्म फोर्सेस है, ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, सिक्योरिटी कम्युनिटी है या पॉलिटिकल एलीट है, वो जानते हैं कि वो रिश्ते बहुत जरूरी हैं दोनों देशों के लिए।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आज हमसे जुड़ने का और हमें ये यूएस इलेक्शन जो आज विश्व भर की चर्चा बना है उसके ऊपर जानकारी देने का।
बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी,
हमसे जुड़िए जब आप चाहें, SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।
ये
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।